الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج قرآن پاک کے آخری پارے 30ویں پارے کی ابتدا سے سورہ نباؤن سے سورہ عمہ سے قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں خبر کو نباؤن کہتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نباؤن ہے، سورۃ النبا، اور اس کا دوسرا نام سورہ تساؤل اور سورہ عمّ یتساءلون بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمّ یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں جس میں انہیں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ بڑی خبر کیا ہے؟ ایک تفسیر ہے قیامت، کہ قیامت کی وہ بڑی خبر ہے جس میں لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات شروع ہو گئی کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ اب اس میں اختلاف کیا ہے کہ کچھ لوگ تو قطعیت سے کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، اور کچھ لوگ تردد اور شک کے ساتھ کہتے تھے کہ یار ہو بھی سکتا ہے اٹھ جائیں، تو یہ ان میں اختلاف تھا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ خبر عظیم جو ہے، نبا عظیم جو ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، تو کوئی کہتا تھا جادو ہے، کوئی کہتا تھا کہانت ہے، کوئی کہتا تھا شعر و شاعری ہے، تو یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جس بڑی خبر میں ان کا آپس میں اختلاف تھا اور جس کے بارے میں سوال کر رہے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی نبوت و رسالت تھی۔ آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں ان کا آپس کے اندر اختلاف تھا، کوئی معاذ اللہ جادوگر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اب آگے ارشاد ہوا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، خبردار وہ جلد جان جائیں گے، پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ آج تو اختلاف کر رہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں، قرآن خدا کا کلام ہے یا نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں، آج اختلاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جلد جان جائیں گے، جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خدا کا کلام ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتیں اور اپنی عظمتیں بیان فرمائیں، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر دلائل قائم ہو جائیں۔ اور یہ جو دلائل ہیں، یہ وہ ہیں جو انسان سے خارج ہیں، کچھ تو انسان کے وجود کے اندر دلائل ہوتے ہیں، کچھ انسان سے خارج ہیں۔ فرمایا، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے और एक निहायत चमकता चिराग सूरज बनाया और बदलियों से जोरदार पानी उतारा ताकि उसके जरिए अनाज और सब्जा निकालें और घने बागात। अल्लाह ताला ने ये सारी अपनी कुदरतें बयान फरमाई कि तुम्हें हमारी कुदरत में क्या शक है कि हम मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। तुम हमारी कुदरतों के जरा मंजर तो देखो, हमने ज़मीन को बिछौना बना दिया, पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया, तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया, नींद तुम्हारी आराम का जरिया, रात को ढांप देने वाली बनाया, दिन को रोजी कमाने वाला बनाया, तुम्हारे ऊपर सात आसमान हमने तान दिए। कितनी नेमतें तुम्हें दी और कितनी कुदरतों का जहूर कर दिया। तो फरमाया और फिर बदलियों से ज़ोरदार पानी उतारा, बादलों से पानी बरसता है, उससे तुम्हारा अनाज निकलता है, सब्जा निकलता है, घने बागात उगते हैं। तो खुदा की कुदरतों के नज़ारे तो दिन रात तुम्हारे सामने, ऊपर देखते हो तो खुदा की कुदरत नजर आती, जमीन को देखते हो तो खुदा की कुदरत नजर आती, रात को सोते हो तो खुदा की कुदरत है, जागते हो तो खुदा की कुदरत है। अब आगे फरमाया इन यौमल फसल काना मीकाता यौम युनफखु फिस्सूरि फतअतून अफवाजा, बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो तुम फौज दर फौज चले आओगे। फैसले का दिन क़यामत, कब? जब एक सींग नुमा सूर के अंदर फूंक मारी जाएगी तो तुम फौज दर फौज कब्रों से ग्रोह के ग्रोह निकलेंगे, फौजों की फौजें कब्रों से निकलेंगी, मैदाने माशर की तरफ भागती हुई जा रही होंगी। तो फरमाया कि ये होगी क़यामत, ये है फैसले का दिन। मजीद क्या होगा उस दिन? फरमाया वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा वसुहिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और आसमान खोल दिया जाएगा तो वो दरवाजे बन जाएगा, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे जैसे बारीक चमकती हुई रेत जो दूर से पानी का धोखा देती है। फरमाया कि जब क़यामत आएगी, जब सूर फूंका जाएगा तो आसमानों में दरवाजे बन जाएंगे, उन दरवाजों से फरिश्ते उतरेंगे, फिर आसमान फट जाएगा, फरिश्ते उसके किनारों पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद ज़मीन पे नीचे उतर आएंगे और फिर आसमान को ख़त्म कर दिया जाएगा। और पहाड़ जो है इतने मजबूत, किधर को हिमालया, कहाँ कोहे कराक्रम, कहाँ कोहे हिंदुकश, कहाँ माउंट एवरेस्ट, K2, ये वो सब दुनिया के पहाड़ ऐसे रीजा रीजा कर दिए जाएंगे जैसे रेत के जर्रे होते हैं, और उनको यूं करके चलाया जाएगा, वो यूं चल रहे होंगे जिस तरह पानी चल रहा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये क़यामत का मंजर है जब पहला सूर फूंका जाएगा और दुनिया फना होगी, ये उस वक्त का मंजर है। मजीद क्या है? फरमाया इन जहन्नम कानत मिरसादन लित्तागीन मआबल लाबिथीन फीहा अहकाबा ला यज़ूकून फीहा बर्दन वला शराबा इल्ला हमीमन वगस्साका जज़ाअन विफाका। बेशक जहन्नम ताक में है, सरकशों के लिए ठिकाना है, उसमें मुद्दतों रहेंगे, उसमें किसी तरह की ठंडक का मज़ा ना चखेंगे और ना कुछ पीने को मगर खौलता पानी और दोज़खियों की पीप, बराबर बदला होगा। अल्लामान वल हफीज़, ये जहन्नम का मंजर है। सरकश जिनके सामने इस्लाम की दौलत आई लेकिन उन्हें ठुकरा दिया, जिनको तौहीद की दावत दी गई लेकिन उन्हें इनकार कर दी, जिन्होंने खुदा के रसूलों नबियों और किताबों को मानने से इनकार कर दिया, सरकश हैं, ठिकाना जहन्नम में। और जहन्नम के अंदर मुद्दतों रहेंगे, लेकिन ये मुद्दतों से मुराद कोई ख़त्म होने वाली मुद्दत नहीं, ना ख़त्म होने वाली मुद्दत, हमेशा दायमी खुलूद दवाम, जो कुरान पाक की दीगर आयतों में अल्फाज आते हैं खालिदीन फीहा आबादा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तो ये मुद्दतों ना ख़त्म होने वाली मुद्दत है जिसे मुद्दतों फरमाया गया। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबं वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, बेशक वो हिसाब का खौफ ना रखते थे और उन्होंने हमारी आयतों को बहुत ज़्यादा झुटलाया। जुर्म, ये उनका जुर्म जहन्नम में क्यों? इसलिए कि उनको हिसाब का डर खौफ ही नहीं था, हम उनको बार बार कहते थे मरना है तुमने और तुम्हें हिसाब देना है, वो कहते टेंशन ही कोई नहीं, हम मानते ही नहीं, ना हिसाब को मानते थे ना हिसाब से डरते थे और खुदा की आयतों को झुठलाते थे। ये उनका जुर्म, और ये जुर्म अल्लाह ताला ने गिन के रखा हुआ था। फरमाया वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, और हमने हर चीज लिख कर शुमार कर रखी है, तो अब चखो तो हम तुम्हारे अजाब ही को बढ़ाएंगे। जो उन्होंने किया था लिखा हुआ मौजूद है। फरिश्ते तो नामा अमाल लिखने वाले साथ ही है ना, किरामन कातिबी लिखते हैं जो बंदा करता है, तो जो जो किसी ने किया वो सब लिखा हुआ है। और फिर उससे पहले हर शय लोहे महफूज के अंदर अल्लाह ताला ने शुमार कर रखी है, वहां लिखी हुई है। और यहां पर जो है कि हमने हर शय को हम लिख कर शुमार कर रखा है, इससे मुराद लोहे महफूज। तो लोहे महफूज में हर बंदे का अमल लिखा हुआ, फिर फरिश्तों ने हर बंदे का अमल लिखा हुआ। ये जहन्नमियों और काफिरों का अंजाम, अब मुत्तकी और ईमान वालों का अंजाम। इरशाद फरमाया इन लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा। बेशक डर वालों के लिए कामयाबी की जगह है, बागात और अंगूर हैं, और उठते जौबन वालियां जो एक उम्र की हैं, और छलकता जाम है, वो जन्नत में न कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना एक दूसरे को झुटलाना। जो मुत्तकी हैं, खुदा से डरने वाले, जिसकी पहली शर्त ईमान है, ये तकवे का पहला दर्जा कि आदमी शिर्क और कुफर से बचे। तो जो मुत्तकी हैं, जिनके दिल में खुदा का डर है, खौफ है, जो खुदा की अजमत और हैबत को पेश नजर रखते हैं, जिनके दिलों में तकवे का नूर मौजूद है, फरमाया उनके लिए कामयाबी की जगह है, बागात हैं, जन्नत के बागात, अंगूर हैं, वहां पर अल्लाह तबारक व ताला उनको अजवाज अता फरमाएगा, छलकते जाम होंगे, कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, कोई झुटलाना और इस तरह की बात नहीं होगी। सुभान अल्लाह। आगे इरशाद होता है जज़ाअम मिन रब्बिका अता हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा रहमान ला यमलिकून मिनहु खिताबा यौम यकूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا। ये बदला है, ये जो जन्नतियों को फरमाया ना कि ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, फरमाया ये बदला है तुम्हारे रब की तरफ से नहायत काफी अता, बख्शिश। वो तुम्हारा रब कौन? वो जो आसमानों और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब का रब है, नहायत रहम फरमाने वाला है। लोग अल्लाह से बात करने का इख्तियार नहीं रखेंगे। जिस दिन जिब्रील और सब फरिश्ते सफ़े बनाए खड़े होंगे, कोई ना बोल सकेगा मगर वही जिसे रहमान ने इजाज़त दी हो और उसने ठीक बात कही हो। वो सच्चा दिन है, अब जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले। कितनी बातें इरशाद फरमाई। फरमाया के ये जो जन्नतियों को नेमतें मिलेंगी, ये क्या है? जज़ाअम मिन रब्बिका, ये तेरे रब की तरफ से बदला है। जो तू दुनिया में ईमान रखता था, नमाजें पढ़ता था, खुदा का कलाम खोल के पढ़ता था, तेरी जबान खुदा का जिक्र करती थी, हुक्म खुदा के सामने तेरा सर झुक जाता था, खुदा ने फरमाया कि फजर में अपनी नींद को छोड़ और जा मस्जिद में नमाज पढ़, नींद कुर्बान कर दी, मस्जिद में आ गया। खुदा ने फरमाया मेरे कलाम को, मेरे कुरान को मोहब्बत से पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने जो फरमाया उसने किया, तो फरमाया जज़ाअम मिन रब्बिका, ये बदला है तेरे रब की तरफ से। और इस बदले के अंदर, क्योंकि बंदे ने अमल तो छोटा सा किया और जज़ा इतनी बड़ी, जज़ा इतनी बड़ी, तो फरमाया कि अताअन हिसाबा, इसमें रब की तरफ से अता भी है, इसमें खुदा की तरफ से अता भी शामिल है। और फरमाया कि क़यामत के दिन फरिश्ते और जिब्राइल अमीन सफ़ों में खड़े होंगे और किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, कोई कलाम नहीं करेगा सिवाय उसके जिसे खुदा खुद इजाजत दे, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। हाँ, अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम सिफारिश करो, और पहली सिफारिश कौन करेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जो अल्लाह ताला शफात की इजाजत देगा वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, कुल कहिए, तुस्मा सुनी जाएगी आपकी, वशफा तो शफा, आप शफात करें आपकी कबूल करेंगे, आपकी मानी जाएगी। तो नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम सबसे पहली शफात करेंगे, सबसे पहला इज़्न जो है वो खुदा के सबसे बड़े महबूब अलैहि सलातो वसलाम को दिया जाएगा, फिर उसके बाद शफात का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो खुदा की इजाज़त के बगैर नहीं कोई बोलेगा, लेकिन इजाज़त से सारे नबी सिफारिश करेंगे, वली सिफारिश करेंगे, पीरो मुर्शिद सिफारिश करेंगे, हाजी करेंगे, हाफिज़ करेंगे, नेक लोग करेंगे, उलमा करेंगे, ये सिफारिश करेंगे खुदा की बारगाह में। तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये लोग शफात करने वाले होंगे। अब अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल यौमुल हक, ये सच्चा दिन है। पहले काफिरों का अंजाम, फिर ईमान वालों का अंजाम, दोनों का बयान करके फरमाया ये सच्चा अंजाम है, रास्ते दोनों बता दिए, वो भी ठिकाना है ये भी ठिकाना है, जहन्नम भी है जन्नत भी है, कुफ्र भी है ईमान भी है। अब जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता बना ले, फरमाया रास्ते दोनों बता दिए, जहन्नम में जाने का भी जन्नत में जाने का भी। फमन शा अत्तखज इला रब्बिही मआबा, अब जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले, मर्जी आपकी कि कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। फरमा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबन यौम यन्ज़ुरुल मरु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा, बेशक हम तुम्हें एक करीब आए हुए अजाब से डरा चुके हैं, जिस दिन आदमी वो देखेगा जो उसने उसके हाथों ने आगे भेजा, और काफिर कहेगा काश मैं किसी तरह मिट्टी हो जाता, काश में किसी तरह मिट्टी हो जाता। फरमाया क्यामत का दिन वो है जो करीब ही है, इधर मरे अब उसके बाद क्यामत की तरफ ही जा रहे, लम्हा लम्हा क्यामत के करीब हो रहे। तो फरमाया कि उस दिन हाल ये होगा कि जब नामा आमाल सामने आएगा तो काफिर कहेगा काश कि मैं मिट्टी होके खत्म हो जाऊं, लेकिन ये मेरे आमाल का बदला मुझे ना दिया जाए, लेकिन ये तमन्ना जो है ये कोई भी फ़ायदा नहीं देगी। अब इसके बाद सूरह नाज़िआत अगली सूरत शुरू होती है। सूरह नाज़िआत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, इसमें 2 रुकू और 46 आयतें हैं। नाज़िआत कहते हैं उन फरिश्तों को जो रूह खींचते हैं, जब बंदे की वफ़ात फौत होने का वक्त आता है तो जो रूह खींचते हैं, नज़्उन का मतलब होता है खींचना, नाज़िआत रूह खींचने वाले फरिश्तों की जमात, तो इस मुनासबत से इसका नाम सूरह नाज़िआत है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नासिआति गरकं वन्नाशितात नश्तं वस्साबिहाति सबहन फस्साबिकाति सबकन फल्मुदब्बिराति अमरा, सख्ती से जान खींचने वालों की कसम और नरमी से बंद खोलने वालों की और आसानी से तैरने वालों की फिर आगे बढ़ने वालों की फिर कायनात का निज़ाम चलाने वालों की, इन सारे फरिश्तों की कसम। रूह खींचने वाले वो जो वो फरिश्ते हैं, और नरमी करने वाले जो नरमी से बदन को जब जिस्म से जुदा करते हैं तो उसमें नरमी इख्तियार करते हैं, नरमी से बंद खोलते हैं, उनकी कसम। और जो आसमानों के अंदर आसमानों ज़मीन के दरमियान मोमिनों की रूहें लेकर आते जाते हैं, तैरते हुए जाते हैं आते हैं, उन फरिश्तों की कसम। फिर जो इस खिदमत पर जल्द पहुंचते हैं जिस पर वो मुकर्रर हैं, उन फरिश्तों की कसम जो सबकत ले जाने वाले, और उन फरिश्तों की कसम जो दुनिया का निज़ाम चलाते हैं। इन सब फरिश्तों की कसम किस बात पर इस बात पे कि ए लोगों क़यामत आनी है, इन सारे फरिश्तों की कसम ए लोगों क़यामत ज़रूर आएगी। अब यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन फरिश्तों की कसम जो दुनिया के निज़ाम की तदबीर करते हैं, चलाते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है युदब्बिरुल अम्र, कायनात का निज़ाम अल्लाह चलाता है। ये कुरान पाक की आयत, कायनात का निज़ाम अल्लाह चलाता है। यहां फरमाया कि उन फरिश्तों की कसम जो कायनात का निज़ाम चलाते हैं, मुदब्बिरुल अम्र अल्लाह भी है, कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह भी है, और कायनात का निज़ाम चलाने वाले फरिश्ते भी हैं। सवाल ये होता है कि क्या ये शिर्क हो गया? हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला ही तो फरमा रहा है कि जहान के कामों का निज़ाम फरिश्ते चलाते हैं। शिर्क इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला का जो वस्फ है वो अल्लाह की शान के लायक है। अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर सारी कायनात का निज़ाम चलाता है, और फरिश्ते जो है वो खुदा की मुकर्रर करदा जिम्मेदारी जो खुदा ने उन पर रखी है उसके मुताबिक निज़ाम चलाते हैं। तो ये ज़ाती और अताई का फ़र्क है। फरिश्ते खुदा की इजाज़त से करते हैं और खुदा की अता से करते हैं और खुदा के हुक्म से करते हैं, और अल्लाह ताला गनी है, बेपरवाह है, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं। तो जब ये फ़र्क दरमियान में आ जाए तो वही लफ्ज़ जो खुदा के लिए है युदब्बिरुल अम्र, वही लफ्ज़ फरिश्तों के लिए आ गया फल मुदब्बिराती अमरा। लिहाजा सिर्फ नाम मुश्तरक हो जाए तो शिर्क नहीं होता, नाम एक हो जाए तो शिर्क नहीं होता। खुदा भी आलिम है, और भी दुनिया इंसान भी आलिम होते हैं, खुदा अलीम है, इंसानों के अंदर भी अलीम होते हैं, शिर्क नहीं होता। शिर्क तब होता है कि जब वो सिफत ऐसी मानी जाए जैसी खुदा की है। खुदा की सिफत ज़ाती है, अब किसी की ज़ाती मानेंगे तो शिर्क हो जाएगा। खुदा की सिफत हमेशा से है, हमेशा रहेगी, न कभी उसके अंदर कोई, न कभी वो मादूम हुई, न हो सकती है न होगी। बंदे की सिफत मादूम थी, वजूद में आई, खुदा चाहे तो मादूम कर दे दोबारा। लिहाजा जब ये फ़र्क होते हैं तो फिर ये शिर्क नहीं होता। और इससे पता चला कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के बावजूद फरिश्तों के जरिए निज़ाम कायनात चलाता है। आगे फरमाया यौम तरजुफुर राजिफा तत्बउहर रादिफा, जिस दिन थर थराने वाली थर थराएगी, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली। जिस दिन थर थराने वाली थर थराएगी, यानी ज़मीन जो है, पहला जब पहली मरतबा हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे तो ज़मीन थर थराना शुरू हो जाएगी। थर थरा के जो है ना सब निज़ाम तहस नहस, सब ख़त्म, इंसान सब मर जाएंगे, आसमान बिखर जाएगा, सितारे मिट जाएंगे, सूरज चांद बेनूर हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाए। फिर 40 साल के बाद दोबारा वो सूर में फूंक मारेंगे, अब दोबारा सारे जिंदा होना शुरू हो जाएंगे। दरमियान में 40 साल का वक्फा है, 40 साल सब ऐसे ही रहेंगे, फिर दोबारा सूर में फूंक मारेंगे, कब्रों से निकलना शुरू हो जाए, अब मैदान माशर की तरफ जाएंगे। तो ये है तत्बाउहर रादिफा। अब क्यामत जब आ जाएगी फिर क्या होगा? फरमाया कुलूबुन यौमा इज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिया, दिल उस दिन खौफ ज़दा होंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। यकूलून आइन्ना लमर्दूदून फिल हाफिरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरह क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरह फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह। काफिर कहते हैं क्या बेशक हम ज़रूर फिर उल्टे पांव पलटेंगे, क्या उस वक्त जब हम गली हड्डियां हो जाएंगे। कहने लगे जब तो ये पलटना नुकसान का पलटना है, तो वो फूंक इसराफील अलैहिस्सलाम की, वो फूंक तो एक झिड़कना है तो फौरन वो लोग खुले मैदान में आ पड़े होंगे। काफिर अभी तो कहते हैं कि यार क्या मरने के बाद दोबारा उठना है, ये तो बड़े नुकसान की बात है, दोबारा जिंदा हो जाएंगे फिर हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते बस एक फूंक है, एक फूंक है, वो ऐसी झिड़कना होगा, सब मैदान माशर में पहुंचे होंगे, सारे मैदान माशर में पहुंचे होंगे। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ये बातें सारे कुफार को बताते वो आगे से मजाक उड़ाते, नबी पाक अलैहिस्सलाम को उससे ईज़ा होती, तो अल्लाह ताला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि ये जो रसूल पैगाम दें और आगे से कौम झुटलाए, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले रसूलों के साथ भी ये हुआ। अब उसकी मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाता है। इरशाद फरमाया, हल अता का हदीफ मूसा इध नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुकद्दस तुआ इध हब इला फिरऔन इन्नहु तगा फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा फअराहुल आयतल कुबरा फकज़्ज़ब व असा थुम्म अदबर यसअ फहशर फनादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى। फरमाया कि ए नबी, क्या तुम्हें तुम्हारे पास मूसा की खबर आई? जब उसे उसके रब ने पाक जंगल तुवा में निदा फरमाई, फरमाया कि फिरौन के पास जा, ए मूसा फिरौन के पास जा, बेशक वो सरकश हो गया है, तो उससे कह कि ए फिरौन, क्या तुझे इस बात की तरफ कोई रगबत है कि तू पाकीज़ा हो जाए, और ये कि मैं तुझे तेरे रब की तरफ राह बताऊं तो तू डरे? फिर मूसा ने फिरौन को बहुत बड़ी निशानी दिखाई तो फिरौन ने झुटलाया और नाफरमानी की। फिर उसने मुकाबले की कोशिश करते हुए पीठ फेर दी तो लोगों को जमा किया, फिर पुकारा, फिर बोला, मैं तुम्हारा सबसे आला रब हूँ। तो अल्लाह ने फिरौन को दुनिया और आखिरत दोनों के अजाम में पकड़ा, बेशक इसमें डरने वाले के लिए जरूर इबरत है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का खुलासा अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि मुकद्दस वादी तुआ के अंदर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा फरमाई, फरमाया कि जाओ फिरौन की तरफ, मैंने तुम्हें रसूल बनाया, और उसे जाके समझाओ, खुदा के अजाब से डराओ, उसे कहो जाके कि ए फिरौन, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे पाक होने का तरीका बताऊं, तुझे राह हिदायत दिखाऊं? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी निशानी दिखाई, मौजज़ा दिखाया, लेकिन वो सब देखने के बावजूद उसे जो है वो अपना असा का मौजज़ा दिखाया, उसे अपना रोशन हाथ वाला मौजज़ा दिखाया, इसके अलावा भी मुख्तलिफ मौक़े में मौजज़े दिखाते रहे, लेकिन फिरौन तो मुकाबले में आ गया, जादूगर ले आया, जादूगर के जरिए मुकाबला किया, लोगों को जमा करके कहने लगा, ये पता नहीं कौन से मूसा जनाब अपने रब को ले आए, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे ऊंचा रब मैं हूँ, माअद अल्लाह। तो जब इस कदर सरकशी की कि खुदाई का दावा कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने उसे दुनिया के अजाब में भी पकड़ा कि उसको दरिया में गर्क कर दिया और उसके लश्कर को भी डबो दिया, और आखिरत के अजाब के अंदर भी खुदा ने उसे गिरफ्तार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें बड़ी इबरत है उसके लिए जो डरने वाला है। अब आगे अल्लाह ताला लोगों को मरने के बाद उठने के हवाले से दलील देते हुए इरशाद फरमाता है, अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हारी समझ के मुताबिक तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का, उसे अल्लाह ने बनाया है। यानी लोग कहते थे, यार हम मर जाएंगे, हम रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर कैसे जिंदा होंगे दोबारा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के लिए तो वैसे बराबर है, अल्लाह ताला के लिए चींटी को पैदा करना और पूरी जमीन को पैदा करना सब बराबर है, चींटी और हाथी का पैदा करना खुदा के लिए बराबर है, खुदा उसको भी कुन फरमाता पैदा हो जाती, उसको भी कुन फरमाता पैदा हो जाती। लेकिन फरमाया कि तुम्हारी समझ के एतबार से तुमसे सवाल है कि ये बताओ कि तुम्हें दोबारा पैदा कर देना ये बड़ा काम है या ये सारे आसमान बना देना ये बड़ा काम? तो अब इंसानी अकल के अतबार से तो फौरन आएगा ना कि यार एक बंदे को दोबारा बनाना तो इतना बड़ा काम नहीं है जितना इतना बड़ा आसमान बना देना, इतना बड़ा आसमान बना देना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बना हा, इसे खुदा ने तो बनाया है, ये आसमान खुदा ने तो बनाया है, तो जिस खुदा ने इतना बड़ा आसमान बना दिया तो तुम क्या हो छोटे से जिसको दोबारा ना खुदा बना सके? तो ये लोगों की समझ के एतबार से कलाम किया। अब अल्लाह ताला फरमाता है, इसी दलील को जो है वो आगे बढ़ाते हुए फरमाया, रफ़अ समकहा फसव्वाहा व अग़्तश लैलहा व अख़रजा दुहाहा वल अर्ध बाअदा ज़ालिका दहाहा अख़रजा मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा मताअ लकुम व लिअनआमिकुम। उसकी आसमान की छत ऊंची की, फिर उसे ठीक किया और उसकी रात को तारीक किया और उसके नूर को जाहिर किया, और उसके बाद जमीन फैलाई, फिर उस जमीन में उसका पानी और उसका चारा निकाला और पहाड़ों को जमाया तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के फायदे के लिए। फरमाया खुदा ने आसमान बुलंद किया, रात भी बना दी, उसमें नूर भी डाल दिया, जमीन भी उसके बाद फैलाई, फिर जमीन से पानी और चारा निकाला, पहाड़ जमा दिए तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे चुपायों को फायदे के लिए। जो चारा उगता है, जो अनाज उगता है, अनाज तुम खाते हो, चारा तुम्हारे जानवर खाते हैं। अब अल्लाह ताला दोबारा क़यामत का तस्किरा फरमाता है और क़यामत में जो दो तरह के लोग हैं उनके हवाले से बयान फरमाता है। फरमाया फ़ाइदा जा अति तौमतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फअम्मा मन तगा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। फरमाया फिर जब वो आम सबसे बड़ी मुसीबत आएगी क़यामत, फिर जब वो आम के सब पे आम होगी, सबसे बड़ी मुसीबत आएगी, उस दिन आदमी याद करेगा जो उसने कोशिश की थी, और जहन्नम हर देखने वाले के लिए जाहिर कर दी जाएगी। तो बहरहाल वो जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, तो बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है। और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। फरमाया क़यामत के दिन दो तरह के लोग हैं, एक वो जिसने दुनिया में सरकशी की थी और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, माल 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 माल, पैसा पैसा पैसा, सरकशी की, कुफ्र इख्तियार किया और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, आखिरत का इनकार भुला दिया। फरमाया ये तो फरमाया जहन्नम इसका ठिकाना। और दूसरी तरफ वो बंदा है जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया कि यार मुझे तो खुदा की बारगाह में जाना, मैं गुनाह करूंगा खुदा को कैसे जवाब दूंगा, मैं बदनिगाही करूंगा, बदकारी करूंगा, मैं रिश्वत खाऊंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं लूटमार करूंगा, मैं सूद खाऊंगा, मैं जुल्म करूंगा, मैं माँ बाप को सताऊंगा, खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। ख्वाहिशात नफ्स तो हैं, बदनिगाही को दिल करता है, हराम खाने को दिल करता है, मुफ्त में मिल रहा है हराम, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन खुदा का अजाब भी होगा। तो अब नफ्स पे काबू कर लिया, नफ्स को कंट्रोल कर लिया कि हराम का एक लुकमा नहीं खाना भले भूखा मर जाऊं, हराम का एक लुकमा नहीं खाना। तो जो अपनी ख्वाहिश को जिसने रोक लिया और रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया, फरमाया जन्नत उसका ठिकाना है। फइन्नल जन्नत हियल मअवा, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। फैसला आपके हाथ, फैसला हमारे ऊपर छोड़ दिए, दुनिया को तरजीह देनी है या आखिरत को, ख्वाहिशात के ही पीछे चलना है या ख्वाहिशात को रोकना है, खुदा की बंदगी इताअत और उसके हुक्म के मुताबिक चलना है। ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, ख्वाहिशात तो माद अल्लाह एक से बढ़ के एक गंदी ख्वाहिश इंसान के दिल में पैदा होती है, बदकारी की ख्वाहिश, शराब की ख्वाहिश, हराम की ख्वाहिश, जुल्म की ख्वाहिश, लेकिन खुदा के डर से इन सारी ख्वाहिशात को कुचल के रख देना है, मिल या मेट कर देना है, इनको नहीं अमल करना है इन ख्वाहिशात के ऊपर, हराम की ख्वाहिश नहीं पूरी करनी किसी भी सूरत, क्योंकि खुदा की बारगाह में मुझे इसका हिसाब देना है। जब ये करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला फरमाता है तुम ये करो जन्नत मैं दूंगा। तुम्हारा काम ख्वाहिशात को रोकना और खुदा की बंदगी को तरजीह देना, जन्नत देना मेरा काम। अब इसके बाद अल्लाह ताला दोबारा इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं ए नबी कि वो कब के लिए ठहरी हुई है, तुम्हारा उसके बयान से क्या ताल्लुक, तुम्हारे रब ही तक उसकी इंतहा है, तुम तो फकत उस शख्स को डराने वाले हो जो उससे डरे, गोया जिस दिन वो उसे देखेंगे तो समझेंगे कि वो सिर्फ एक शाम या एक दिन चढ़े के वक्त बराबर ही ठहरे थे। कुफार सवाल करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम से कि भी आप ये बताएं क्यामत आनी कब है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हबीब अलैहिस्सलाम, आप इन लोगों से कहें कि मेरा काम क्यामत का वक्त बताना नहीं है, मेरा काम यह है तुम्हें बताना कि क्यामत आएगी, तैयारी कर लो, मानो क्यामत को और करो तैयारी उसके लिए, ईमान ला के अमल करके। क्यामत का वक्त बताना मेरा काम नहीं है, ये खुदा के इला रब्बी का मुंतहा हा, ये तो इसकी इंतहा तो खुदा के पास है, क्यामत का इल्म खुदा के पास है, मेरा काम ये बताना नहीं है। इन्नमा अंता मुनज़िरु, तुम तो सिर्फ डराने वाले हो, डर सुनाने वाले हो क्यामत का, जो क्यामत से डरे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम क्यामत का वक्त मुतय्यन वक्त बताने नहीं आए थे, हाँ क्यामत के बारे में बताने आए थे कि आएगी तैयारी कर लो। और जहां तक ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को इल्म है या नहीं, तो उलमा की एक तादाद यही फरमाती है कि क्यामत का इल्म नबी पाक अलैहिस्सलाम को था, हाँ बताने की इजाजत नहीं थी। और क्यामत का दिन जो होगा, फरमाया कि जब क्यामत के दिन वो उठेंगे तो उनको लगेगा कि यार दुनिया के अंदर तो बस एक दिन या एक शाम ठहरे थे, ये 70 साल की जिंदगी जो खत्म नहीं होती, क्यामत के दिन लगेगा कि बस एक शाम थी, 2, 4, 5, 6 घंटे की शाम थी, आई गुजर गई, ये एक दिन था, आया गुजर गया, इतना छोटा लगेगा। तो इतनी छोटी सी जिंदगी में हमसे जो है अपने नफ्स पे काबू ही नहीं पाया जाता, हम अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि यार ये थोड़ी सी जिंदगी है, हलाल मौजूद होता है फिर खाम खा आराम की तरफ जाते, ऐसा नहीं होता कि हलाल कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, हाँ ये है कि लंबी लंबी ख्वाहिशें नहीं पूरी होंगी। तो यार क्यों थोड़ा नफ्स पे काबू पाके हम हलाल के ऊपर गुजारा नहीं कर लेते, शादी कर लेते हैं, बीवी हो जाती है, इसके बावजूद बदकारी और गंदी निगाहों की आदत नहीं जाती, क्यों क्यों, जब हलाल का जरिया मौजूद है फिर हराम की तरफ क्यों जाते हैं, बस वो ख्वाहिशात पे काबू नहीं। तो ये एक शाम के बराबर की जिंदगी लगेगी, बूढ़े को बूढ़े आदमी को समझ आ जाती है कि यार सारी जवानी फजूल गुजार दी, ऐसी गुनाहों में गुजार दी। तो अगर अभी समझ जाएं, जब खुदा ने जवानी दी है, जिंदगी दी है, तो क्यामत के पछतावे से बच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक खैर अता फरमाए। अब इसके बाद सूरह अबस शुरू होती है, अबसा ऐन बा सीन। सूरह अबसा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, इस सूरत में 142 आयतें हैं। इसके पहली आयत के पहले आयत में लफ्ज अबसा मौजूद है, उसकी मुनासबत से इसका नाम सूरह अबसा है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युदरीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतन्फअहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फअन्त लहु तसद्दा वमा अलैक अल्ला यज़्ज़क्का وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى। तैवरी चढ़ाई और मुंह फेरा इस बात पर कि उनके पास नाबीना हाजिर हुआ और तुम्हें क्या मालूम शायद वो नाबीना पाकीजा हो जाए या नसीहत हासिल करे तो नसीहत उसे फायदा दे। बहरहाल वो शख्स जो बेपरवाह बना तो तुम उसके पीछे पड़ते हो और तुम पर इस बात का कोई इल्जाम नहीं कि वो काफिर पाकीजा ना हो। और रहा वो जो तुम्हारे हुजूर दौड़ता हुआ आया और वो डर भी रहा है तो तुम उसे छोड़कर दूसरी तरफ मशगूल होते हो। ये जो सूरह मुबारका है, इसका शान नुजूल और इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत अर्ज कर दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा काफिरों में जो बड़े बड़े सरदार थे उनके पास बैठे हुए थे और उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे। तो अभी एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था कि बड़े बड़े सरदार बैठे हुए नबी पाक अलैहि सल्लम को दावत दे रहे थे। उसी दौरान एक नाबीना साहबी थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। वो नाबीना थे तो उनको सूरत आल का पता नहीं था कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। वो आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जो आपको सिखाया है मुझे भी सिखाइए। अब ये होगी खलल अंदाजी, डिस्टर्बेंस, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो कुफार के सरदारों से उस वक्त बात कर रहे थे और इन्होंने आके कह दिया मुझे सिखाइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये इस पर आपका कबीदा खातिर हुआ, यानी आपको नापसंद हुआ कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये दरमियान में इन्होंने आके अपना सवाल शुरू कर दिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम को जो जलाल आया तो आपके चेहरे मुबारक पर उसके आसार जाहिर हुए और सरकार अलैहिस्सलाम उसी नागवारी के अंदर घर तशरीफ ले गए। अब ज़ाहरी एतबार से तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो किया वो ठीक था कि एक तरफ काफिरों के सरदार जो उस वक्त बैठे और डायरेक्ट उनको इस्लाम की दावत दी जा रही है, तो एक तरफ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कुफार के सरदारों से बात कर रहे थे जो कभी कभार ही आते हैं, दूसरी तरफ ये सहाबी रसूल थे जो किसी भी वक्त आ सकते हैं, और एक तरफ ईमानियात की बात हो रही थी और ये जो सहाबी आके बात करेंगे लाजमी बात है कि ईमानियात से आगे की बात ही उन्होंने करनी थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके के एतबार से जिन लोगों से आप बात पहले कर रहे थे उन्हीं से बात करने को तरजीह दी और आपको ये नागवार हुआ कि दरमियान के अंदर खलल अंदाजी हुई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाई और फरमाया कि ए नबी, ये आपकी शान के लायक नहीं। ये जो शख्स नाबीना सहाबी आपके पास आया, आपने इसको जो भी कहना है इन्होंने मान लेना है। इसका तो दिल है पहले कि मैं पाकीज़ा बनूं और मुझे कोई बात समझाई जाए, दूसरी तरफ जिन सरदारों से आप बात कर रहे थे उनका तो जहन है ही नहीं कि वो बात माने। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक तरफ ये नाबीना सहाबी हैं कि जो चाहते हैं कि मैं पाक हूँ, मुझे नसीहत मिले, मैं उस पर अमल करूँ, दूसरी तरफ वो कुफार हैं कि जिनके अंदर मानने वाली जो है वो पहलू बहुत कम है। तो जो मानने वाला है, जो नसीहत कबूल करने वाला है, जो तज़किया चाहता है, आपको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी बजाय इन लोगों के। तो इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये आयत मुबारका के जरिए आपकी तरबियत फरमाई गई कि आपने अपने चेहरे के ऊपर आपने तैवरी चढ़ाई और मुंह फेरा इस बात पे कि आपके पास एक नाबीना शख्स आया। तो ये नाबीना कहने में एक किस्म का उन सहाबी की तरफ से अल्लाह ताला ने उज्र भी बयान फरमा दिया कि बीना होते तो वो पूरा माहौल देख लेते कि ये तो बड़ी अहम बात चल रही है तो मैं खामोश हो जाऊं, लेकिन चूंकि नाबीना थे नहीं देख सके, तो गोया उनका नाबीना होना एक प्लस पॉइंट था उनके लिए कि उनकी तरफ तवज्जो ज्यादा दी जाती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस आयत मुबारका के नुज़ूल के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हो पर बड़ी शफकत फरमाया करते थे, बड़ी शफकत फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने इनकी वजह से मेरी तरबियत फरमाई थी। और ये भी पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक वो है कि जिस के छोटी छोटी बात के ऊपर भी अल्लाह ताला की तरबियत फरमाता है। क्यों? इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तो वो अजीम ज़ात है कि जिसके ऊपर एक मामूली सा मामूली धब्बा भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, लिहाजा कभी कोई छोटी सी बात भी हुई तो अल्लाह ताला ने फौरन तरबियत फरमा दी कि अरे ए हबीब, आपको यूं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा। तो ये अल्लाह ताला का सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने हबीब अलैहिस्सलाम से ये मोहब्बत थी कि अल्लाह ताला यूं तरबियत फरमाता था। अब आगे इरशाद होता है कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा। ऐसे नहीं, बेशक ये बातें नसीहत हैं, तो जो चाहे इसे याद करे, उन इज्जत वाले सहीफों में जो बुलंदी वाले पाकी वाले हैं, उन लिखने वालों के हाथों से लिखे हुए जो मुअज्जज नेकी वाले हैं। ये कुरान पाक की अजमत है कि कुरान पाक की जो बातें हैं, जो सूरत है, जो आयात हैं, वो इज्जत वाले सहीफों में लिखी हुई, जो बुलंदी वाले हैं, पाकी वाले हैं। अब आगे इरशाद होता है قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ। अब दोबारा कुफार के इनकारे क़ियामत का रद्द होता है और उनको दलील से समझाया जाता है। फरमाया, आदमी मारा जाए कितना नाशुकरा है, अल्लाह ने उसे किस चीज से पैदा किया है? गौर तो करे, अल्लाह ने उसे किस चीज से पैदा किया? एक बूंद से उसे पैदा फरमाया, फिर उसे तरह तरह की हालतों में रखा, फिर रास्ता आसान कर दिया उसे, फिर उसे मौत दी, फिर उसे कब्र में रखवाया, फिर जब चाहेगा उसे बाहर निकालेगा। फरमाया, एक कतरे से पैदा किया, उसका दुनिया में आने का रास्ता आसान किया, फिर उसकी जिंदगी गुजरी तो खुदा ने उसे मौत दी, फिर उसे कब्र में रखवाया, अब फिर जब चाहेगा खुदा उसे निकालेगा। तो अल्लाह ताला की इन कुदरतों पे गौर किया जाए। फरमाया, कल्ला लम्मा यकुमी मा अमरा, यकीनन बंदे ने अब तक पूरा ना किया जो अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था। जो काफिर है उसने अभी तक वो काम पूरा ना किया जो अल्लाह ने उसे करने का हुक्म दिया था, यानी मानने का, ईमान का। अब अल्लाह ताला मज़ीद दलाइल देता है। फरमाया, फलयंबुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल मा सब्बा थुम्म शक्कनल अर्द शक्का फअंबतना फीहा हब्बा وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلًا وحدائق غلبًا وفاكهةً وأبًا متاعًا لكم ولأنعامكم। तो आदमी को चाहिए अपने खानों को देखे कि हमने अच्छी तरह पानी डाला, फिर जमीन को खूब चीरा तो उसमें अनाज उगाया, और अंगूर और चारा और जैतून और खजूर और घने बागीचे और फल और घास तुम्हारे फायदे के लिए और तुम्हारे चुपायों के लिए। तो खुदा की इतनी नियमतें हैं तुम्हारी, तुम्हारे ऊपर, लिहाजा उसकी मानो। अब आगे क्यामत का तस्किरा होता है। फरमाया, फ़ाइदा जा अति सौखा यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शअनु युग्नी। फिर जब वो कान फाड़ने वाली चिंगाड़ आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपने बेटों से। उनमें हर शख्स को उस दिन एक ऐसी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। ये क़यामत का मंजर कि बंदा माँ से, बाप से, बीवी से, बेटों से, सबसे भागेगा कि मैं नहीं किसी को नेकी दे सकता। मेरी माँ जन्नत में जा रही है, मैं नहीं नेकी दूंगा। मेरा बाप जा रहा है, मैं नहीं नेकी दूंगा। भाई बेटे जा रहे हैं, मैं नेकी नहीं दूंगा। ये क़यामत का मंजर है, बंदे ने खुद ही नेकियाँ करनी है। अब फरमाया, वजूही यौम इज़िन मुस्फिरह दाहिकतुम मुस्तबशिरह व वजूही यौम इज़िन अलैहा गबरह तरहक़ुहा क़तरह उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरह। बहुत से चेहरे उस दिन रोशन होंगे, क़यामत के दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे, हंसते हुए खुशियाँ मनाते होंगे, और बहुत से चेहरों पर उस दिन गर्द पड़ी होगी, उन पर स्याही चढ़ रही होगी, ये लोग वही काफिर बदकार हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे चेहरों को रोशन करे, हंसता हुआ करे, खुशियाँ मनाता हुआ करे, और अल्लाह ताला हर दूसरे बुरे अंजाम से हमें महफूज फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।